अगर मैं कहूं कि बचपन में हमने जो जानवरों से भरी एक तैरती हुई विशाल नाव की कहानी सुनी थी, मेरा मतलब है वो कहानी असल में दुनिया के सबसे पुराने और शक्तिशाली साम्राज्यों के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैचारिक बगावत थी, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो, है ना?
हाँ बिल्कुल, अब मुझे लगता है यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी है।
यानी कि हम उसे बहुत मासूम नजरिए से देखते हैं, जिराफ की लंबी गर्दन नाव की खिड़की से बाहर झांक रही है, सब कुछ कितना प्यारा और सरल लगता है।
एग्जैक्टली, हम उन पुरानी कहानियों को ना आज की रंग बिरंगी किताबों के चश्मे से देखने के आदि हो गए, लेकिन जब आप उस समय के इतिहास, वहां के भूगोल और तत्कालीन समाज को खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है।
हाँ, आपको एहसास होता है कि ये कहानी मासूमियत से कोसों दूर थी। ये उस दौर की राजनीति, सत्ता और इंसान की अहमियत को लेकर एक बेहद गंभीर और विद्रोही विमर्श था, और आज की हमारी इस चर्चा में या इस गहन विश्लेषण में हम इसी विमर्श को डीकोड करने वाले हैं। हमने स्रोत के तौर पर डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के जेनेसिस पर दिए गए लेक्चर का इस्तेमाल किया है, विशेषकर नोहा और उस महाप्रलय की कहानी पर।
हाँ, और उनका जो काम है ना, वो हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट देता है।
बिल्कुल, और मैं यहाँ सुनने वालों को बता दूं कि हमारा मकसद किसी भी धार्मिक विचार को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दस्तावेज की वास्तुकला और उस समय की दुनिया के मनोविज्ञान को समझना है।
और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जेनेसिस के शुरुआती 11 अध्यायों में ये जल प्रलय की कहानी सबसे लंबी है।
हाँ, सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है।
सही कहा, ये केवल एक प्राकृतिक आपदा का विवरण नहीं है, ये दुनिया के बनने, बिगड़ने और फिर से रचे जाने का एक बेहद व्यवस्थित ब्लूप्रिंट है।
तो इसे समझने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना होगा, है ना?
हाँ, उस प्राचीन मध्य पूर्व में जिसे हम एंशिएंट नियर ईस्ट कहते हैं। बिल्कुल, वहीं से इस कहानी की असली जड़ें जुड़ती हैं।
तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नाव की जिसे हम आर्क कहते हैं। मैंने डॉक्टर मैथ्यूज के नोट्स में पढ़ा कि इस नाव का आकार कोई छोटी मोटी चीज नहीं था।
अरे बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही विशाल थी।
हाँ, ये लगभग 150 गज लंबी थी। अगर हम आज के हिसाब से इसकी कल्पना करें तो ये करीब 1.5 फुटबॉल मैदान के बराबर थी।
1.5 फुटबॉल मैदान और 25 गज चौड़ी,
मतलब ये कोई आम नाव तो बिल्कुल नहीं थी।
हाँ, ये 3 मंजिला इमारत जैसी थी, और इसे किसी नाव की तरह नहीं बल्कि तूफानों का सामना करने के लिए एक तैरते हुए बक्से या आयताकार बार्ज की तरह बनाया गया था।
बार्ज की तरह, लेकिन इसके आकार से ज्यादा मुझे एक और चीज ने हैरान किया।
वो क्या?
इसकी बनावट का वो हिस्सा जो इसमें था ही नहीं। इस विशाल नाव में कोई पाल या जिसे हम सेल कहते हैं वो नहीं थी, और ना ही कोई पतवार या रडर था।
हाँ, और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है।
जरा रुकिए, 1.5 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी नाव और उसमें कोई पतवार नहीं, मतलब उसे दिशा देने का कोई तरीका ही नहीं था अंदर।
कोई इंसानी तरीका नहीं था, इसका कोई कप्तान नहीं था जो ये तय कर सके कि लहरों के बीच इसे कहाँ ले जाना है।
बाप रे, ये तो बहुत डरावना है
ना? डॉक्टर मैथ्यूज इसे एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास का नाम देते हैं। वे इसे स्वतंत्रता, सुरक्षा और मुक्ति की जेल कहते हैं, प्रिजन ऑफ फ्रीडम।
प्रिजन ऑफ फ्रीडम, क्या बात है।
देखिए, एक तरफ ये पूरे 1 साल तक उन लोगों के लिए एक जेल की तरह थी जहां वे बंद थे, और बाहर भयानक तबाही मची थी।
हाँ, वो बाहर नहीं जा सकते थे।
बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ यही वो इकलौती जगह थी जो उन्हें उस विनाशकारी पानी से सुरक्षित रख रही थी।
ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये तो ऐसा है जैसे अंतरिक्ष में एक आधुनिक स्पेसक्राफ्ट भेजा जाए जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील ही ना हो।
एकदम सटीक उपमा है।
हाँ, अंदर बैठे यात्री पूरी तरह से मिशन कंट्रोल के भरोसे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, बस इंतजार कर सकते हैं। ये बहुत भयानक भी है, लेकिन एक तरह से ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी है।
और ये समर्पण ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। अगर हम इस कहानी की साहित्यिक संरचना को गहराई से देखें ना, तो वो भी इसी ईश्वरीय नियंत्रण को स्थापित करती है।
वो कैसे?
इस कहानी को बहुत ही सोच समझकर एक पहाड़ की चढ़ाई और उतराई की तरह लिखा गया है।
एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह? मुझे थोड़ा और समझाएं।
इसे ऐसे देखिए, कहानी शुरू होती है, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, इसे विसर्जन या अनक्रिएशन कहा गया है.
अनक्रिएशन मतलब सृष्टि को वापस लेना.
हाँ, यानी ईश्वर अपनी ही बनाई उस दुनिया को उलट रहा है जो उसने पहले रची थी. पानी सब कुछ डुबो देता है, कहानी अपने चरम पर पहुंचती है एकदम पहाड़ की चोटी की तरह.
ओ, समझ गया.
और फिर धीरे धीरे पानी घटने लगता है जिसे नया सृजन या रिक्रिएशन कहा गया है. ये पूरी संरचना एक पिरामिड या पहाड़ जैसी है. बिल्कुल, ये लिखने का तरीका ही साबित करता है कि ये कोई अचानक आई बाढ़ या नियंत्रण से बाहर हो गई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी.
वाकई मुझे समझ आ रहा है. मतलब लिखने वाले ये स्थापित करना चाहते थे कि तबाही के बीच भी एक व्यवस्था थी, एक संप्रभु नियंत्रण था.
हाँ, एक सोची समझी योजना.
लेकिन अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है.
क्या?
अगर जेनेसिस की कहानी ये कह रही है कि सर्वोच्च नियंत्रण एक अकेले ईश्वर के हाथ में है, तो उस समय की असल दुनिया में नियंत्रण किसके हाथ में था? उस दौर के लोग सत्ता और दुनिया को कैसे देखते थे?
यही वो मोड़ है जहां भूगोल इतिहास को आकार देता है. उस समय की दुनिया मुख्य रूप से दो बड़ी ताकतों के बीच बटी हुई थी.
दो बड़ी ताकतें?
हाँ, अगर आप नक्शा देखें तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ मिस्र का विशाल साम्राज्य था यानी इजिप्ट, और पूर्व की तरफ मेसोपोटामिया जो दजला और फरात नदियों की भूमि थी.
और इन दोनों साम्राज्यों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, है ना?
बिल्कुल अलग, जमीन आसमान का फर्क था.
हाँ हाँ, डॉक्टर मैथ्यूज बताते हैं कि मेसोपोटामिया में भारी राजनीतिक उथल पुथल थी. वहाँ एक के बाद एक अलग अलग लोग सत्ता में आए, सुमेरियन, अकादियन, अमोराइट्स.
हाँ, जिनके राजा हमोरा भी बहुत मशहूर हुए थे.
सही का. और फिर बेबीलोनियन और असीरियन. वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं था, रोज एक नया राजा, नई बगावत.
और इसके उलट अगर आप मिस्र को देखें तो वहाँ नील नदी के कारण शासन और भोजन दोनों में गजब की स्थिरता थी.
हाँ, मैंने पढ़ा है कि नील नदी का बहाव साल दर साल एक सा रहता था.
बिल्कुल, जिससे वहाँ की कृषि, अर्थव्यवस्था और सत्ता सब कुछ एक बहुत ही स्थिर लय में चलती थी.
और इन दो महाशक्तियों के ठीक बीच में एक छोटा सा जमीनी पुल था, कनान, जिसे हम प्राचीन इसराइल भी कहते हैं.
हाँ, और ये इलाका उस फर्टाइल क्रीसिंग का एक बहुत अहम हिस्सा था. जो भी बड़ी ताकत इस क्षेत्र पर कब्जा करती उसे पूरे मध्य पूर्व पर रणनीतिक बढ़त मिल जाती.
तो इसी वजह से कनान में मिस्र या बेबीलोन जैसा कोई विशाल साम्राज्य नहीं पनप पाया.
एकदम सही, वो हमेशा छोटे छोटे शहर राज्यों में या सिटी स्टेट्स में बटा रहा.
तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने जेनेसिस की ये कहानियां संजोई, जिन्हें हम पेट्रियार्क्स या पूर्वज कहते हैं, वे इन दो विशाल और शक्तिशाली दुनियाओं के बीच सैंडविच की तरह फंसे हुए थे.
बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया आपने. वो वाकई सैंडविच बने हुए थे और इसी वजह से उनकी जीवन शैली बहुत अनोखी थी. विद्वान इसे डिमॉर्फिक कहते हैं.
डिमॉर्फिक, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वे दो अलग अलग तरह की जिंदगी जी रहे थे?
एक तरह से हाँ. देखिए, वे एक ही समय में दो अलग अलग सामाजिक ढांचों का हिस्सा थे.
अच्छा.
एक तरफ वे अपने जानवरों के झुंडों के साथ बंजर इलाकों में घूमने वाले खाना बदोश चरवाहे थे, जहां जिंदा रहना ही रोज की एक जद्दोजहद थी.
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ वे हेब्रॉन जैसे स्थापित शहरों में भी जाकर रहते थे, जहाँ व्यापार था, राजनीति थी और प्रशासन था.
सोचिए, ये कितना थका देने वाला रहा होगा. ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सोमवार से शुक्रवार शहर में एक सख्त कड़े नियमों वाली कॉरपोरेट जॉब करे.
हाँ बिल्कुल.
और फिर वीकेंड पे पूरी तरह से घने जंगल में जाकर सर्वाइवल मूड में जिए, जहाँ हर पल कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है.
आपकी उपमा बहुत हद तक उस मानसिक और शारीरिक खिंचाव को दर्शाती है. और इस लगातार आवाजाही का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इन लोगों ने मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों जगहों की कहानियों, विचारों और मिथकों को बहुत करीब से देखा और सुना.
यानी वे दुनिया से कटे हुए नहीं थे?
बिल्कुल नहीं, वे लगातार इन बड़े साम्राज्यों के संपर्क में थे और उनके विचार ग्रहण कर रहे थे.
मिथकों की बात करें तो मुझे लगता है हमें यहाँ मिथक शब्द को भी थोड़ा साफ करना चाहिए. आज हम मिथक या मिथ का मतलब किसी मनगणंत कहानी, झूठ या बच्चों को बहलाने वाली कथाओं से लगाते हैं.
लेकिन प्राचीन दुनिया में मिथक का ये मतलब हरगिज नहीं था.
तो फिर क्या था?
उस समय मिथक कोई मनोरंजन का साधन नहीं थे, वे दरअसल किसी समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह थे.
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत दिलचस्प है।
हाँ, वे इस बात को सही ठहराते थे कि समाज का ढांचा कैसा होना चाहिए, राजा को सत्ता किसने दी है और प्रकृति में जो रहस्यमय चीजें हो रही हैं उनके पीछे की वजह क्या है।
तो अगर वे ऑपरेटिंग सिस्टम थे तो मिस्र और मेसोपोटामिया में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा था? मैंने पढ़ा है कि मिस्र की मान्यताएं बहुत ही अजीबोगरीब थीं।
हाँ, वो आज के नजरिए से काफी अजीब लग सकती हैं।
वहाँ आतुम नाम के देवता की कहानी थी जो खुद को आदिम पानी के एक छोटी सी पहाड़ी से उत्पन्न करता है।
हाँ, एक प्राइमेवल हिलॉक से।
और फिर वो छींक कर या थूक कर अन्य देवताओं को जन्म देता है। छींक कर देवता बनाना, ये सुनने में बहुत हास्यास्पद लगता है।
आज हमें हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मकसद था। ये शारीरिक द्रव्यों का इस्तेमाल असल में उसकी शक्ति को दर्शाता था। इसी तरह मिस्र की एक और विचारधारा थी, मेम्फाइट विचारधारा।
उसमें क्या था?
उसमें पिताह नाम का देवता जादुई शब्दों का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड बनाता है। वे मानते थे कि इंसानों को कुम्हार के चाक पर मिट्टी से गढ़ा गया है,
जैसे बर्तन बनाते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मिस्र की इन कहानियों में महिलाओं के निर्माण को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई।
ये तो बहुत अजीब है।
और ये सारी कहानियां सिर्फ एक बात को पुख्ता करती थीं कि फराओ खुद एक देवता है और समाज का जो ढांचा है वो अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता।
और अगर हम पूर्व की तरफ यानी मेसोपोटामिया की तरफ जाएं तो
वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो तो और भी हिंसक था।
बहुत ज्यादा हिंसक। वहां का सबसे मशहूर महाकाव्य एनुमा एलिश है।
हाँ, वहां की कहानी कहती है कि शुरुआत में दो आदिम जल थे, अपसु जो मीठे पानी का नर देवता था और तियामत जो खारे पानी की मादा थी।
और फिर देवताओं के बीच एक खौफनाक और हिंसक युद्ध छिड़ जाता है।
हाँ, और उस युद्ध का अंजाम और भी भयानक है। बेबीलोन का मुख्य देवता मार्डुक तियामत को मार गिराता है और वो उसके मृत शरीर को एक शीप की तरह दो हिस्सों में फाड़ देता है।
हाँ, एक क्लेम की तरह, एक हिस्से से वो आकाश बनाता है और दूसरे से पृथ्वी।
ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा है। मतलब किसी की लाश को फाड़कर दुनिया बनाना और इंसानों को कैसे बनाया गया?
वो हिस्सा तो और भी डरावना है।
एक बागी देवता किंगू की हत्या की गई और उसके खून से इंसानों को रचा गया।
अब जरा सोचिए, अगर आप उस समाज के एक आम नागरिक हैं और आपको बचपन से ये कहानी सुनाई जा रही है तो आप अपने बारे में क्या सोचेंगे?
अगर मैं ये सुनूंगा तो मैं तो यही सोचूंगा कि मैं एक मारे गए अपराधी देवता के खून से बना हूँ, मेरी अपनी कोई कीमत नहीं है।
ठीक यही वो बात थी जो सत्ता में बैठे लोग चाहते थे।
ओह, तो ये पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था।
बिल्कुल, ये सीधे सीधे राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। मार्दुक की ये खूनी कहानी असल में बेबीलोन के राजा की सत्ता और उसकी क्रूरता को सही ठहराने का एक अचूक तरीका थी।
मतलब राजा जनता से बिना कुछ कहे ये संदेश दे रहा था कि देखो, देवताओं ने भी हिंसा से सत्ता पाई है और तुम इंसान तो सिर्फ उनके गुलाम हो।
हाँ, तुम्हारा काम सिर्फ हमारी और देवताओं की सेवा करना है।
ये वाकई बहुत चालाकी से बुना गया जाल था। और जब हम इस चश्मे से जेनेसिस को देखते हैं तो जेनेसिस केवल एक अलग कहानी नहीं लगती, बल्कि वो उस समय की सबसे बड़ी महाशक्तियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगती है।
बिल्कुल सही पकड़े हैं आप।
जेनेसिस का ईश्वर किसी लौकिक हत्या से या कॉस्मिक मर्डर से दुनिया नहीं रचता। वो जादुई मंत्र नहीं पढ़ता। वो अपने शब्दों से एक व्यवस्थित तरीके से अच्छाई और प्रेम से दुनिया बनाता है।
और इंसान को किसी दानव के खून से नहीं बल्कि अपनी छवि में बनाता है।
हाँ, जो इंसान को एक गरिमा देता है, एक डिग्निटी देता है।
ये दुनिया को देखने के नजरिए में एक क्रांतिकारी बदलाव था। दुनिया कैसे बनी, इसका जो कारण था ना, उसी ने ये तय किया कि दुनिया के विनाश को कैसे देखा जाएगा।
अच्छा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों जुड़े हुए हैं।
हाँ, यही बुनियादी अंतर हमें ये समझने में मदद करता है कि जल प्रलय के बारे में इन अलग अलग सभ्यताओं की कहानियों में इतना बड़ा वैचारिक टकराव क्यों है।
मुझे पता है कि जल प्रलय या फ्लड की कहानी सिर्फ जेनेसिस में नहीं है। मेसोपोटामिया के गिलगमेश का महाकाव्य और अत्रहासीस में भी जल प्रलय का जिक्र है। वहां के नोहा का नाम उतना पिश्तिम था।
समानताएं जरूर है, कहानी का ढांचा एक जैसा लगता है, लेकिन जो चीज इन्हें अलग करती है वो है जल प्रलय का कारण।
कारण?
दोनों में अलग अलग कारण थे।
बिल्कुल।
क्या आपको पता है अत्रहासीस की कहानी में देवता बाढ़ क्यों लाते हैं?
क्यों?
क्योंकि इंसान बहुत शोर मचा रहे थे।
क्या इंसान शोर मचा रहे थे इसलिए उन्हें डुबो दिया गया?
उनकी संख्या बढ़ गई थी और देवताओं की नींद खराब हो रही थी, वो सो नहीं पा रहे थे।
ये तो ऐसा है जैसे कोई बेहद गुस्सेल और संकी मकान मालिक अपने किरायेदारों को इसलिए घर से निकाल दे क्योंकि वे तेज आवाज में संगीत बजा रहे हैं।
हाँ, ये एक बहुत ही क्रूर और बेपरवाह ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है।
इस कहानी में तो मानव जीवन की कीमत एक कीड़े से ज्यादा नहीं लगती। देवताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा।
सही कहा, लेकिन जेनेसिस का कारण इसके बिल्कुल उलट है। वहाँ जल प्रलय का कारण इंसानों का शोर नहीं है, बल्कि उनका नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, हिंसा और बुराई का चरम पर पहुँचना है।
यानी वो एक मॉरल इंटरवेंशन था।
बिल्कुल, जेनेसिस का ईश्वर गुस्से में नहीं बल्कि गहरे दुख में है। उसे अपनी सबसे खूबसूरत रचना के पतन का अफसोस है। ये एक जरूरी हस्तक्षेप था, कोई सनक नहीं।
ये एक बहुत गहरा फर्क है। जेनेसिस में ईश्वर सिर्फ तबाही नहीं ला रहा है, वो एक रिश्ता भी बना रहा है। डॉक्टर मैथ्यूज ने बताया है कि जेनेसिस में पहली बार कवेनेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
हाँ, कवेनेंट यानी एक पवित्र वादा या नियम।
अन्य मिथकों में देवताओं और इंसानों के बीच जो रिश्ता था वो तो एक लेनदेन या व्यापार जैसा था ना, तुम हमें बलि चढ़ाओ हम तुम्हें बारिश देंगे।
एग्जैक्टली, एक ट्रांजैक्शन था। लेकिन जेनेसिस का ये कवेनेंट 8 लोगों के एक छोटे से परिवार के साथ किया गया, एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है।
और ये वादा किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया। जेनेसिस की साहित्यिक शैली में संख्याओं का जो सटीक उपयोग हुआ है वो भी यही बताता है।
हाँ, वो जो नंबर्स का खेल है वो बहुत दिलचस्प है।
जैसे 7 दिन, 40 दिन और रात, 150 दिन, इन संख्याओं का बार बार दोहराव सिर्फ कोई संयोग नहीं है, ये कहानी में एक समरूपता या सिमेट्री लाता है।
और ये सिमेट्री पढ़ने वाले को ये एहसास दिलाती है कि भले ही बाहर पानी सब कुछ निगल रहा हो, लेकिन सब कुछ ईश्वर के पूर्ण और व्यवस्थित नियंत्रण में है।
और इस कहानी में जो हिब्रू भाषा के शब्दों का खेल है वो तो और भी कमाल का है।
हाँ, शब्दों का चयन बहुत गहरा है।
हिब्रू में नुआख शब्द सुनने में रेस्ट या नुआख जैसा लगता है
जी।
जिसका मतलब है आराम। यानी ये नाव मानवता को इस भयानक विनाश के बाद एक नई शुरुआत, एक नया आराम देने का प्रतीक है।
और नाव से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण भाषाई कड़ी है। इस विशाल नाव के लिए हिब्रू शब्द तेवा का इस्तेमाल किया गया है।
तेवा, मुझे याद आ रहा है कि ये शब्द बाइबल में कहीं और भी बहुत खास जगह पे इस्तेमाल हुआ है।
हाँ, जरा सोचिए कहाँ। एक्सोडस की किताब में।
अरे हाँ, शिशु मूसा वाली कहानी।
बिल्कुल, जब बेबी मोसेस को मिस्र के फराओ के कहर से बचाने के लिए नील नदी में एक टोकरी में रखा गया था, तो उस छोटी सी टोकरी के लिए भी यही हिब्रू शब्द तेवा इस्तेमाल किया गया है।
वाकई ये कितना शानदार कनेक्शन है। एक तरफ 1.5 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी नाव और दूसरी तरफ एक छोटी सी टोकरी।
हाँ, और दोनों ही मामलों में पानी मौत और विनाश का प्रतीक था।
लेकिन दोनों ही बार उस देवाह ने, उस छोटे से तैरते हुए बर्तन ने मानव जीवन और सभ्यता के भविष्य को बचा लिया।
इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा मुझे लगता है जेनेसिस के अध्याय 7 के श्लोक 16 में आता है। वहां लिखा है कि जब नोहा, उनका परिवार और जानवर उस नाव में चले गए तो ईश्वर ने खुद नाव का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।
बाहर से दरवाजा बंद कर दिया? ये कोई छोटी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ दरवाजा बंद करना नहीं था, ये ईश्वर द्वारा उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना था।
जैसे एक पिता अपने बच्चों को सुरक्षित करता है।
हाँ, ये नोहा को एक नए आदम के रूप में, एक नई शुरुआत के लिए सुरक्षित करने का सबसे स्पष्ट संकेत था। ये साबित करता है कि वो ईश्वर किसी हिंसक और निर्दयी देवता की तरह नहीं था, बल्कि एक रक्षक था जो विनाश के बीच भी जीवन को सहेज रहा था।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये बात साफ हो जाती है कि जेनेसिस में जल प्रलय की कहानी केवल एक नाव, कुछ जानवरों और बाढ़ से बचने की एक साधारण लोक कथा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये प्राचीन मध्य पूर्व की अराजक, जादुई और हिंसक पौराणिक कथाओं के खिलाफ एक बहुत ही स्पष्ट दार्शनिक और साहित्यिक जवाब है।
एक तरह का वैचारिक युद्ध।
हाँ, ये उस दौर के लोगों को बता रही थी कि ये दुनिया किसी क्रूर देवता का खिलौना नहीं है जो अपनी नींद खराब होने पर दुनिया डुबो दे। ये दुनिया एक व्यवस्थित, नैतिक और संप्रभु नियंत्रण में है।
ये वाकई विचार करने योग्य बात है। जहां आसपास की सभ्यताएं अपने देवताओं को हिंसक, स्वार्थी और सनकी मानती थीं, जेनेसिस एक ऐसे ईश्वर की बात करता है जो बुराई और भ्रष्टाचार का न्याय तो करता है, लेकिन साथ ही मानवता के भविष्य को बचाने के लिए खुद नाव का दरवाजा भी बंद करता है।
और यही वो नजरिया है जो इन प्राचीन ग्रंथों को केवल इतिहास के पन्नों से निकालकर उस समय के विश्व दृष्टिकोण की सबसे बड़ी बहसों में तब्दील कर देता है।
इस सफर के अंत में मैं उस तेवा वाले विचार पर वापस जाना चाहूंगा।
हाँ, वो टोकरी और नाव वाला विचार।
हमने देखा कि कैसे नोआ की उस विशाल नाव और शिशु मूसा की उस छोटी सी टोकरी, दोनों के लिए एक ही शब्द तेवा का प्रयोग हुआ। दोनों ही बार ये जीवन रक्षक तेवा उन अराजक और विनाशकारी पानी में तैर रहे थे। पानी हमेशा से मानव इतिहास में तबाही, अनिश्चितता और मौत का प्रतीक रहा है।
बिल्कुल।
लेकिन जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। आज हमारे पास शायद वो भौतिक जल प्रलय न हो, लेकिन हम सब रोजाना सूचनाओं के एक भारी सैलाब, वैचारिक अस्थिरता और एक अजीब सी अराजकता के बीच जी रहे हैं।
एक डिजिटल जल प्रलय कह सकते हैं।
बिल्कुल, एक डिजिटल जल प्रलय। हर तरफ से एक शोर है जो हमें डुबोने के लिए तैयार है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में हमारे इस व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में हमारा तेवा क्या है, हमारी वो जीवन रक्षक नौका क्या है जो हमें इस गहरे और उफनते पानी में सुरक्षित रखे हुए हैं। इस विचार के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और चीजों की गहराई में उतरने से कभी पीछे मत हटिए।